ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल लगभग 67% मतदान हुआ। राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में हुआ मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। 100 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। पहली बार इस चुनाव में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई थी। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि ये सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉ मोइजू की ये पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। डॉ मोइजू आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। श्री मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वे बेंगलुरु और मुंबई में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के 30 में से 27 सिफारिशों पर विचार के लिए विश्व बैंक की सराहना की है। कल प्रोफेसर निक स्टर्न के साथ नई दिल्ली में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराया जाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जलवायु परिवर्तन पर ठोस कार्रवाई के लिए जरूरी है। प्रोफेसर स्टर्न बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। प्रोफेसर स्टर्न ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अत्यंत पिछड़े देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वायुसेना आज चेन्नई में मरीना बीच पर सुबह 11 बजे एक बड़ा एयर शो करेगी। ये आयोजन 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस समारोह के शुभारंभ के तौर पर किया जा रहा है। इस शो में लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, एमकेआई, जगुआर, पोसिडॉन विमान और नवीनतम प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित जेट 72 विमान शामिल होंगे। अनुमान है कि इसे 15 लाख लोग देखेंगे। इस शो को इस वर्ष लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध कराने की जांच के सिलसिले में कई ठिकानों पर तलाशी ली है। NIA ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 26 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान NIA को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। संदेह है कि इस मामले में शामिल संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें भारत में आतंकी हमले करने और आतंकवादियों से जुड़े दुष्प्रचार में लिप्त थे। उन्हें जैश ए मोहम्मद से प्रेरित जमात गुट में युवाओं की भर्ती भी दी गई थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार के समक्ष रखी गई 10 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू की है। इस बीच 24 परगना जिले के जयनगर में 4थी कक्षा की एक छात्रा की दुष्कर्म और हत्या मामले में बैरकपुर अदालत ने आरोपी मुस्तकिन सरदार की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। पीड़ित बच्ची कल मृत पाई गई थी। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर 3:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पहला मुकाबला हार गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ग्वालियर में शाम 7 बजे से शुरू होगा। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल इस मैच में नहीं खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।